फिर इसके बाद आदमी को चाहिए कि वो जिस तरह जिंदगी से कुछ लेता है इसी तरह इसे कुछ दे भी, और बेकारी और बेरोजगारी की जिंदगी ना गुजारे कि खाए मगर कुछ ना करे, ख्वाह ये बेकार बाशी अल्लाह की इबादत में यकसुई के नाम पर ही क्यों ना हो, इसलिए कि इस्लाम में रहबानियत की कोई हैसियत नहीं। यानी बेकार बिस्तर तोड़ने वाले और टीवी देखने वाले मर्द इस्लाम को पसंद नहीं है। सुबह के वक्त मर्द घरों से निकलते ही अच्छे लगते हैं। ये हमारी रिवायत भी है, ये हमारा दीन भी है। अंबिया कराम ने भी रिज़्क़ के हलाल कमाने के लिए मेहनतें और कोशिशें की थी। इमाम बहकी रहमहुल्ला ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रिवायत नकल की, उन्होंने फरमाया, दुनिया में बदतरीन चीज़ बेकारी है। शाबुल ईमान बहकी की रिवायत है, हदीस 1769। तो बेकार मर्द दुरुस्त नहीं होते। आप देखिए कि निरी लड़ाई और झगड़ा और बीमारी है, तो दुआ करें किसी का मर्द घर में ना हो। आप देखेंगे घर के हालात भी ख़राब हो जाते हैं। तो शुरू से अपने बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं, बेटों को, कि आपने कमाना है और फिर आपने अपनी ज़िंदगी चलानी है। अलामा मनावी ने फैज़ुल कदीर में इसकी तशरीह करते हुए फरमाया कि जब इंसान अमल से खाली होकर बेकार बैठा रहता है तो बज़ाहर वो खाली नज़र आता है, मगर इसका दिल तरह तरह की बेहुदा चीज़ों में मशगूल होता है, बल्कि शैतान इसमें अपना आशियाना बना लेता है और इसी में अंडे बच्चे देता रहता है। अब यहाँ फिर एक जुमला बोल देती हूँ कि अगर कोई मर्द खाली रहेगा तो शैतान उसके दिल से खेलेगा, तो जवान बच्चे अगर बेकार रहेंगे तो क्या होगा। बेटे, मुझे तो रोग लगता है दिल को सोचकर कि आज हमारी यूथ और हमारे जवान होते बच्चे, इनके पास इतना वक्त क्यों है। आप देखिए, मैं अभी रास्ते में शाइस्ता जी से पूछ रही थी, बल्कि मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि हम लोग कल से, अल्हम्दुलिल्लाह, कल सुबह जाने से ही एक प्रोग्राम शुरू हो जाना है और मीटिंग वगैरह, लेकिन परसों से हम लोग फ्रांस में, सिर्फ इस वजह से कि बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, तो एक दो दिन के अंदर यानी बच्चे सफारिग हो जाएंगे। मॉन्क का कोर्स करना था हमने शुरू, सबीरुल जन्ना, जो आप लोग कर रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म से वहाँ भी करना है। लेकिन ये सोचा कि अब बच्चों की तब छुट्टियाँ हो रही हैं तो माएँ तो आ जाएंगी पढ़ने के लिए, और उन्होंने आपकी तरह खैर से वीकेंड पे एक दिन का नहीं करना, उन्होंने पूरे वीक का करना है, 4 दिन का। अब क्या करें, बच्चे घर हैं। पहले हमने सोचा कि 2 महीने छोड़ के सितंबर में शुरू करते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन था कि 2 महीने में तो दौरे कुरान का असर ही ख़त्म हो जाएगा, जो इंटरेस्टेड हैं वो छोड़ देंगे। और कुछ माओ ने ये भी कहा कि हम बल्कि समर में ज़्यादा इजीली सेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको शायद पता है कि नहीं, फ्रांस में बच्चों को 2 दफ़ा दिन में स्कूल जाना होता है। वो सुबह 8:30 जाते हैं, फिर 11:30 आते हैं, फिर शायद 1:30 बजे तक घर रहते हैं या 1 बजे तक, घंटा 1.5, फिर उसके बाद जाते हैं और फिर शाम 4 बजे आते हैं। यानी एक माँ सिर्फ यही काम करती है। तो कुछ माओ की तरफ से ये भी हमारे जहन में बात आई सामने, फिर तो बल्कि अच्छा है कि हमें नहीं दो दो दफ़ा जाना तो करें। खैर, सारी बातें इस्तखारों के बाद जो अल्लाह ने दिल में बात डाली वो बेहतरीन थी, कि ना सिर्फ ये कि माओ का भी ना करें, हम बच्चों का भी करते हैं। अब परसों से वहाँ 2 महीने का कोर्स शुरू होगा, मंडे से थर्सडे होगा, टोटल आप देखें 90+ आवर्स होंगे, जिसमें सेम वक्त पे माएँ अपने इस रूम, जैसे मस्जिद है तो एक हॉल बच्चों का है तो माओं का है दूसरे हैं, सेम इसी सिचुएशन में कि माएँ भी पढ़ेंगी और बच्चे भी पढ़ेंगे। बेहतरीन कोर्स हुआ, नाम लेने की देर थी, अल्लाह ताला ने बेहतरीन साथी भी मिला दी, और हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कभी कि हम बच्चों की क्लासेस इतनी जल्दी शुरू करेंगे। अमूमन बच्चों की क्लासें कब शुरू होती हैं, जब एक बैच तैयार हो चुका होता है, फिर वही पढ़ते हैं, वही माएँ टीचर बन जाती हैं। लेकिन अल्लाह ने जब कोई काम लेना होता है तो उसके लिए आसानियाँ कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों से हम वहाँ कोर्स शुरू करें। कल मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली, आपके बच्चे समर में क्यों फारिग रहे, क्या आप लोगों को समर कैंप नहीं चाहिए, क्या आपके जवान होते बच्चों का कोई हक नहीं है। यहाँ कौन सी कोई नानी खाला मासी है कि उधर जाओ और उधर जाओ, रहना तो घरों में ही है ना, और सबके हाथों में वो खेल खिलौने ही होने हैं। माँ पढ़ने आएगी तो क्या होगा, बाप पढ़ने। तो मैं रास्ते में अभी कह रही थी शाइस्ता बाजी से कि मेरे दिल में ये अल्लाह ने डाली, कल तक भी नहीं थी, जब आप सब माओ से डिस्कस किए ना अंदर बैठ के, कल भी मेरे जहन में नहीं था, मैंने आपसे कल ही पूछ लेना था। लेकिन मैंने आज आपको एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आपके बच्चों की छुट्टियाँ यहाँ शायद जुलाई के 20th से शुरू हो रही हैं, आप लोग अभी से इसको प्लान करें। यकीन करें, जो एक मुल्क में प्लान बन सकता है वही दूसरे मुल्क में भी बनता है। हमने अपने वही नॉर्वेजियन चीज़ों को शेयर किया, वो फ्रेंच में ट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश की, उर्दू की, एक एक चीज़ रेडी है, एक एक चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ शौक और जज्बों की देर है। तो मैं अपनी तरफ से आपको ये सजेशन देके जाऊंगी कि जब आपके बच्चों की छुट्टियां शुरू हों तो आप लोग अपनी इस क्लास को जो कर रहे हैं आप लोग भी उसके साथ मर्ज करें, बच्चे आपके साथ सीखें, जगह मिल जाएगी, इजाज़त ली जाएगी, जब नियत होगी तो काम हो जाएगा। आप लोग अपनी क्लास हफ्ते में एक दिन कर रहे हैं, आप उसको समर में हफ्ते में जितने दिन बच्चे आएंगे उतने दिन आप भी करें, छोटा कर लें, 5 घंटे ना करें, बच्चों के लिए बस मैक्सिमम 3 घंटे, हमने जो फ्रांस में रखा है वो 11 से 2 बजे का टाइम रखा है और इट्स मोर देन एनफ, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन है तो 3 घंटे इस बहुत है। और उसमें एक्टिविटीज़ बच्चे हैंडीक्राफ्ट करेंगे, काटा छांटी चीज़ें बनाते हैं, कोई घड़ी बना रहा है, कोई कुछ बन रहा है, बच्चे दे लव इट। इतनी एक्टिविटीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके मुंह में पानी आएगा कि हम भी करें, मज़ा आता है। तो अपने बच्चों को फारिग ना छोड़ें, अपने अगर इस आइडिया को आगे लेके जाना है बहुत कुछ हो सकता है, आपकी मदद की जा सकती है, लेकिन कुछ जो नहीं करना आपने, अपने बच्चों को फारिग नहीं छोड़ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप। आप खुद भी आजमा लें कभी आप फारिग हो, ऐसे ही कंप्यूटर पे आप पता नहीं क्या क्या देखने लग जाएंगे, ऐसे ही एक, चाहे आप कुरान सुनने का लिंक खोलेंगे ना उसमें से कोई स्टोरी निकल आएगी, स्टोरी पढ़ते जाएंगे पता नहीं वहां से कोई फैशन मैगजीन निकल आएगा। तो अपने आप को भी फेकार ना छोड़ें, अभी से सोचें, प्लान करें, और वाकई अगर आप सीरियस हैं, और मैंने पिछले 15 18 साल 16 17 साल तो हो ही गए, मैं अक्सर सबको ये कहती हूँ कि मैंने जब अपना ये शुरू किया था सफ़र अमेरिका में तो हमने बच्चों की क्लासेस से किया था, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन तब से बनी हुई है आज तक मैं उस पर कायम हूँ कि जब तक मंडे से थर्सडे यानी वीक डेज में मुसलसल 4 या 5 दिन तक ना क्लासेस रखें फ़ायदा नहीं होता। हफ्ते में एक दिन, वहाँ पूरे अमेरिका में सैटरडे स्कूल और संडे स्कूल का रिवाज है, कुछ मस्जिदें कुछ स्कूल सैटरडे स्कूल करते हैं कुछ संडे, 4 5 घंटे का बेहतरीन होता है, हर चीज़ उसमें सिखाते हैं, इस्लामियात भी और दुआएं भी और नमाज भी सब, बट असर नहीं होता। वजह क्या है, 5 दिन बीच में वो उस माशरे के सिस्टम के साथ चल रहे होते हैं, और जाके एक हफ्ते को आके बाज़ मान, तो यहाँ तक का कि गोरों के 3 खुदा हैं तो हमारे 4 हैं, एक दिन संडे को बच्चे तौहीद सीखते हैं और बाकी 4 5 दिन ट्रिनिटी सीखते हैं, अब इनके तो 4 हो गए हैं, ये सच है। तो समर बेस्ट टाइम है जब बच्चे बाहर के माहौल से कटे होते हैं, सिर्फ मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, जाहिर है आप नहीं करना चाहती तो कोई आपसे नहीं कराएगा, लेकिन करके देख लीजिए, सिर्फ इस 1 महीने का कर लें आप, और मैं कह सकती हूँ कि आपको खुद जो मज़ा आएगा, 4 दिन आप हफ्ते में निकले, ना रखें जुम्मे का दिन, मस्जिदों में फारिग नहीं होता या जगह का नहीं, मंडे से थर्सडे रखें, 3 घंटे की क्लास रखें, बच्चे भी रोज़ सुबह उठ के ऐसे ही निकले जैसे आम निकलते हैं, ठीक है आप 7 बजे 8 बजे ना रखें, बच्चे अगर सोते हैं, बाज़ कहते हैं समर में ही तो सोना होता है, समर में तो ये करते हैं, 11 बजे रख लें, जोहर से पहले फारिग हो जाएंगे, जोहर से असर के बीच में रख लें, वैसे बेस्ट टाइम सुबह का है, क्योंकि जब बरकत लेनी है तो सुबह के वक्त की मिलेगी। तो बहरहाल ये वक्त भी मैंने इसलिए बीच में बात कर दी कि शायद मेरी इस बात से आपको कोई आइडिया मिल जाए और आप इससे खैर का कोई काम ले लें, लेकिन वापस आ जाएं कि शैतान उस दिल में अपना आशियाना बनाता है और वहाँ अंडे और बच्चे देता है जो दिल फारिग रहता है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब किसी तंदरुस्त आदमी को देखते तो इसके बारे में लोगों से दरियाफ़्त फरमाते कि इसके पास कोई हुनर है, यानी इसको कोई भी स्किल्स हैं इसके पास, अगर जवाब नफी में मिलता तो वो शख्स इनकी नज़र से गिर जाता, यानी बंदा खुद को क्यों ज़ाया करे, बेकारियत जो है ये बहुत बड़ा रोग है एक इंसान के लिए। एक बुज़ुर्ग ने बेहुनर आदमी को उस उल्लू से तशबीह दी जो खंडर में रहता है और इसके वजूद से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता। इमेजिन करें, उल्लू हमारे यहाँ बेअक्ली की निशानी है, मुसलमान अपने दुनियावी अमल को भी इबादत और जिहाद समझता है जबकि नीयत दुरुस्त हो और वो अमल इसे याद इलाही से गाफिल ना कर दे और इसने अपने इस अमल को पूरी ईमानदारी और उम्दगी से अंजाम दिया हो, इसलिए कि उम्दगी अमल हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मेरे से दोहरा लें, हदीस छोटी सी है, इन अल्लाह कतबल एहसाना अला कुल्ली शयिन, बिला शुबा अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एहसान, एहसान कहते हैं उम्दगी से काम करना, हुसन के दर्जे पे एहसान को फ़र्ज़ करार दिया है, यानी हर काम जो करो अच्छा करो, देखिए थोड़ दिले से क्या करना, राधे दिल से क्या करना, जिसका कहते हैं होल हार्टेडली करो, हाफ हार्टेडली काम नहीं करने चाहिए, फिर इसी तरह एक और रिवायत है, इसको भी दोहरा लें, इन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्किनहु। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक ये बात पसंदीदा है कि जब तुम में से कोई आदमी कोई काम करे तो इसे उम्दगी से करें। तो अपने हर काम को इस हदीस की रोशनी में चेक करें, क्या अपने कामों को अच्छी तरह करती हूँ कि नहीं। पहली रिवायत सही मुस्लिम की थी और दूसरी सही बुखारी की है। और रोज़ाना की वो जिम्मेदारियाँ जिनका फरामोश करना या जिनसे गफलत बरतना किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, वो ये हैं कि वो अपने मुआशरे की खिदमत करें। अब आप देखिए, अभी तक सुबह चल रही है कि एक मोमिन सुबह उठते ही मुआशरे की खिदमत करे, इसके अफराद की ज़रूरतों को पूरा करने में इनकी मदद करे और इनके मामलात में आसानी पैदा करे, ताकि इसका ये अमल इसके लिए सदका और लोगों की दुआएं हासिल करने का ज़रिया बन जाए। अबू मूसा अल अशरी से रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका है। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ना पाए, यानी कुछ है ही नहीं कि सदक़े में दूँ। आपने फरमाया कि अपने हाथ से काम करे और अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाए और सदका भी करे। लोगों ने कहा, अगर ये भी ना कर सके, यानी कि मेहनत भी नहीं कर सकता या ना करे। आपने फरमाया, किसी परेशान हाल हाजतमंद की मदद करे। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर ये भी ना करे। आपने फरमाया, इसे भलाई का हुक्म देना चाहिए। लोगों ने कहा, अगर ये भी ना कर सके, तो फरमाया, वो बुराई से बाज रहे, इसलिए कि ये भी सदका है। क्या पता चला कि मुसलमान एक एक्टिव फाल बेनिफिशियल बंदा होता है। बी लाइका बी, एक शहद की मक्खी की तरह जियो। ज़िंदगी के एक एक मिनट का हक अदा करके दुनिया से जाती है। हम क्या करते हैं, ये हम अपने आप से पूछें। ये सदका हर मुसलमान पर रोज़ाना फ़र्ज़ होता है, बल्कि एक सही हदीस में कि हर जोड़ और हर मुसाम, जोड़ क्या होते हैं, जॉइंट्स, और मुसाम क्या है, पोर्स। कितने पोर्स होते हैं, जहाँ से पसीना आता है। हर मुसाम पर तुलुए शम्स के साथ सदका वाजिब है। इसी तरह मुसलमान अपने गिरदो पेश के लिए चश्मे खैर और अमन व सलामती का मंबा बन जाता है। क्या मतलब है, जिसम में कितने जोड़ हैं, 360 के करीब। तो कम से कम 360 यूरो तो रोज़ देने पड़ेंगे, एक एक जोड़ के सदक़े में एक एक यूरो। और मुसाम कितने हैं, लाखों। अब सवाल पैदा होता है कि इतना कौन सदका दे, किसके पास इतने हैं। तो इसका तरीका देखिएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोहराइएगा, कुल्लु सुलामा मिनन नासी अलैही सदकतुन कुल्ल यौमिन तत्लुउ फीहि शम्सु यादिलु बैनल इस्नैनी सदकतुन व युईनुर रजुला अला दाबतिही फयहमिलु अलैहा औ यरफउ अलैहा मताअहु सदकतुन वल कलिमतु तय्यिबतु सदकतुन व कुल्लु खुतवतिन यख्तुहा इलस्सलाति सदकतुन व युमीतुल अज़ा अनित तरीक़ी सदकतुन। रोज़ाना तुलुए शम्स के साथ लोगों के हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। दो आदमियों के दरमियान सुलह करा देना सदका है। किसी आदमी को इसकी सवारी पर सवार करा देना और इसका सामान उठाकर इसको पकड़ा देना सदका है। पाकीज़ा बोल सदका है। नमाज के लिए उठने वाला हर कदम सदका है। रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना भी सदका है। राह जाते को टहनी को पत्थर को छिलका आए, उसको भी हटा दें, ये ईमान की सबसे अदना शाख है। चूँकि इंसान के ये सारे अज़ा अल्लाह ताला की तरफ से बतौर नेमत इसे मिले हैं, इसकी एहसान शनासी का तकाजा क्या है कि वो इन पर अल्लाह का शुक्र बजा लाए। और शुक्रगुजारी की बेहतरीन सूरत यह है कि इंसान अपने अज़ा व जवारेह को अल्लाह की अतात व बंदगी, इसके बंदों को भलाई पहुँचाने और खैर और फलाह के हर मुमकिन काम में इस्तेमाल करें। तो ये थी एक मोमिन की सुबह। अब आप देखिए कि हमें इतनी देर लगी इसको पढ़ने में, कितनी बातें हमने सीखी, कितनी दुआएं सीखी, कितने जिक्र और औरात सीखे, और इससे बचने का एक ही तरीका सोचो। यानी मैं इसको पढ़ते हुए पूरे वक्त में यही सोच रही हूँ कि कितनी महरूमी है उसकी जो रातों को जागते और दिनों को सोते हैं। तो इंशाल्लाह दिन की बरकत को लेना है तो उसके लिए जागना पड़ेगा। कब? सुबह को। और सोना पड़ेगा रात को। नहीं नींद आती, माहौल बनाए। देखिए ये भी एक बात है इसमें, बल्कि एक टॉपिक भी मैंने दिया था और एक इसका हैंडआउट भी अक्सर क्लासेस में दिया जाता है कि नमाज़ फजर के लिए कैसे बेदार हो या सुबह के लिए कैसे हो। चूंकि इस साल हमारा दौरे कुरान टाइम मैनेजमेंट का था, तो मैंने इस पर भी काफ़ी स्टडी मटेरियल जमा किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी शेयर किया जा सकता है अगर आप सारे अपने आप को उस ग्रुप में रजिस्टर्ड करें जिसमें आप लोगों की, यानी बेसिक जो क्लास का ग्रुप है, तो इंशाल्लाह मैं उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए शेयर करूँगी। इस वक्त जो सुनने के दौरान कुछ सवाल या कोई जहन में बात आई है तो पूछिए जी। आप प्लीज़ इनका सवाल दोहरा देती हूँ कि रात ईशा 11:30 है और फजर 3 बजे है, तो 4 घंटे बने ना टोटल, तो क्या करें? देखिए यहाँ तो 4 घंटे, नॉर्वे में आजकल शायद 3 घंटे भी नहीं होंगे, 1 घंटा आपसे प्लस है उनका ना। तो उसका बेहतरीन तरीका फिर क्या होता है कि आप ईशा तक जागें, ईशा की नमाज़ फ़र्ज़ पढ़े अपने पास। अब अगर 3 घंटे हैं तो आप अलार्म लगा कर सो जाएं, ठीक है, और फजर के लिए उठेंगे। ऑफ कोर्स फिर फजर तो नहीं छोड़ सकते आप, तहज्जुद आप रात को सोने से पहले पढ़ लें, ईशा पढ़ें उसके बाद तहज्जुद पढ़ लें। और अगर आपको लगता है कि आप फजर के लिए जब उठेंगे तो उस वक़्त पढ़ सकते हैं तो उस वक़्त पढ़ लें। यानी फिर बीच में दोबारा उठना, कि आप ज़ाहिर है 3 घंटे के बीच में दोबारा उठना मुश्किल है, तो ऐसा ना करें। और अगर आप आम हालात में तहज्जुद पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस तरह भी अजर देगा। बात वाज़े? यानी चाहे रात को पढ़ के सो जाएं ईशा से साथ ही, या फजर से पहले मिला लें, यानी स्पेशल उसके लिए ना उठें, तो दोनों सूरतों में ठीक है। फिर नॉर्वे में तो मोस्टली रात 2 घंटे की होती है, तो अक्सर लोग जो नमाज़ों की फ़िक्र करते हैं फिर वो फजर पढ़ के सोते हैं। तो फिर आप फजर के बाद भी और आसन दर्जा क्या कि अगर सनराइज है तो उसके बाद आप सो सकते हैं, ठीक है जी। आप जी, मैंने आपको वही जवाब दिया जो दोबारा दूंगी कि तहज्जुद के लिए रात को सोना और सोकर दोबारा उठना शर्त नहीं है। गो के तहज्जुद कहते ही वो है वो नमाज जो नींद छोड़ी जाए, तो आप रात को सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं जी। आप देखिए वितर जो है ना, इसका बेस्ट टाइम तो यह है फजर से पहले का। अगर आपको यकीन है और अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए, नियत और इरादा भी करें उठना है, तो फिर आप रात को वितर ना पढ़ें, ठीक है। और सुबह फजर से पहले जो भी 2 नफिल 4 8 जो तौफीक मिलती है पढ़ के फिर वितर पढ़ लीजिए। और अगर आपको डर है कि सुबह नहीं उठा जाएगा, फजर पे उठूंगी, तो फिर रात को पढ़ लें, कोई हर्ज। और अगर उठ गए तो फिर नफिल पढ़ भी सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है जी। इन्होंने कुछ लिखा है, मुझे सवाल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये कहती हैं कि इधर आंसर दें प्लीज़, अगर मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा करूं अपने बहन भाई और बयान सुनाने के टॉपिक पे, तो के सब दीन की तरफ आए, तो क्या ये सही है? मैं तो पर्दा करती हूँ पर अभी बाकी फैमिली सिस्टर्स नहीं करती। देखिए दूसरों को अच्छी बात सुनाने का तो हर मौके पे ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे तरीके से अपनी शरई हदूद में रहकर ऐसी ज़रूर मौका दें, मर्द मर्दों में बैठें, औरतें औरतों में बैठें, और अच्छी बात सुनने का एहतमाम तो किया जा सकता है, ठीक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।